सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृतीदीप प्रकरण में हम लोगों ने परसों विचार किया था कि वह जो चिदाभास है वह चिदाभास क्या है, लज्जित होता है। किसे लज्जित होता है, मैं भोगता हूं मैं करता हूं ये कहने में मानने में लज्जित होता है। तो कैमुतिक न्याय के द्वारा अर्थात इसका अर्थ न्याय मतलब युक्ति, कहने की क्या बात है, उसके विषय में कहना ही क्या। जब चिदाभास ही भोक्ता नहीं ठहरता है तो चिदाभास का मतलब क्या, प्रतिबिंब। जैसे प्रतिबिंब ही भोक्ता नहीं तो बिंब भोक्ता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका अर्थात प्रतिबिंब जब भोक्ता नहीं है तो बिंब भोक्ता है, ये कोई कहने की बात है क्या। भोक्ता नहीं है बिंब, इसमें कोई कहना है क्या, कहने की कोई जरूरत नहीं। ये प्रतिबिंब ही भोक्ता नहीं है तो बिंब भोक्ता नहीं है, ये फिर कहना है क्या, कहने की जरूरत ही नहीं, स्वतः सिद्ध है वो। हाँ, जो मान लीजिए पहले था और बाद में भोक्ता बनना छोड़ दिया तब कह सकते हाँ अब ये भोक्ता नहीं है। किसके बारे में, यह अब ये चोर नहीं है, अब ये चोर, ये कब कहना है? जब पहला चोर था अब चोरी करना कब कहना पड़ रहा है कि हाँ ये अब चोर नहीं है, किंतु जो पहले से ही नहीं है तो उसके बारे में कहना कि ये चोर नहीं है, कहना नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं कैमुतिक न्याय, अर्थात कहने की क्या बात है उसमें, अर्थात कुछ कहने की बात नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये स्वतः सिद्ध है। तो चिदाभास जब भोक्ता नहीं बनता है तो उस चिदाभास का जो मूल बिंब कौन, कुटस्थ, वो भोक्ता नहीं है, ऐसा कोई कहने की जरूरत नहीं है, ये कह दिया। इसलिए मूल जो मंत्र के ऊपर ही जो प्रकरण आरंभ हुआ था उस मंत्र का तात्पर्य यही है कि ज्ञानी की दृष्टि से क्या है, न चिदाभास भोगता है न कुठस्थ भोगता है। इसीलिए वो किस मिथ्या वस्तु के लिए, नाशवान वस्तु के लिए इस शरीर को, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्यों चलाएगा, क्यों इसको परेशान करेगा, संताप क्यों देगा, नहीं देगा, अथवा अपने में वो संताप लेने का प्रयास नहीं करेगा। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा, भले ही कोई ज्ञानी है, अब ज्ञानी है वो यदि किसी वस्तु के लिए, मिथ्या वस्तु के लिए यदि चलेगा, जैसे उसको भोजन ही करना है ज्ञानी को, तो भोजन करना है तो भोजन कोई संताप नहीं है क्या, हा? खाओ बैठ कर, चबाओ उसको, निगल लो, उसके बाद हाथ धोओ, ये करो, हा? फिर भोजन के बाद फिर उस भोजन का भी परिणाम है ना एक, हा? फिर उसका एक आसार को फिर त्यागना है, अभी सब है क्या नहीं। परंतु ज्ञानी क्या करता है, इसके लिए अपने आप को क्या है, लगाता नहीं, शरीर को शरीर में तादाद में करके अपने आप को तपाता नहीं है, अर्थात किसी चीज के लिए वो प्रयास नहीं करता है, तपाता नहीं है। हाँ, प्रारब्ध में जो बात है वो बात अलग है, जो प्रारब्ध में तो सभी को, ज्ञानी को भी भोगना है और अज्ञानी को भी भोगना है, किंतु ज्ञानी जान करके भोगता है इसलिए उसको पीड़ा नहीं होती है, ये तो प्रारब्ध का भोग है। वो दृष्टा बन करके क्या करता है, उसको उस भोग को समाप्त कर देता है, देख देख करके उसको समाप्त करता है, ये भोग है इसको भोगना है, ये आया है इस शरीर में, अब मुझे क्या करना है, इसको दृष्टा बन करके क्या, इसको समाप्त करना है। हाँ इतना जरूर है, पीड़ा रहेगी किंतु जो अज्ञानी जैसी पीड़ा नहीं रहेगी, वो हाय हाय नहीं करेगा, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, अच्छा था अभी अभी और ऐसा कैसा हो गया, कैसा हो गया। वो हर कोई आदमी आएगा और उसके सामने ये रोना नहीं धोएगा, मैं तो अच्छा था क्या हो गया पता नहीं, मैं तो अच्छा था क्या होगा पता नहीं, वो रोएगा नहीं अज्ञानी जैसे। दुख तो दोनों को होना है किंतु ये किस तरह रोता नहीं, वो यही कहेगा प्रारब्ध है भोग है उसको भोगना है, जब तक है उसको भोग लेंगे उसके बाद तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे, तो उसमें उसका उतना उसको कष्ट नहीं है, वो रोएगा नहीं है, रोने वाला और ज्यादा बीमार हो जाएगा। किंतु ज्ञानी जो है वो बीमार नहीं होगा, जितना है उसको ही खत्म कर देगा भोग करके, आगे वाला भोग नहीं लाएगा। और ये अज्ञानी क्या होता है, जो रोग आ गया उसी की चिंता में और दूसरा रोग आ जाता है, चिंता करते करते ही। तो दो ज्ञानी अज्ञानी में अंतर होता है, भोग तो रहेगा उसका दृष्टा बन करके वो साक्षी बन करके भोगेगा। इसलिए उन शरीरों में जो भोग है, तीन प्रकार के शरीर बताए आपको, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन कारण इन तीनों शरीरों में क्या है, ज्वर होता है, वो तीन शरीर है तो तीन शरीर के तीन ज्वर है, वो तीन ज्वर बताए हैं। तीन ज्वर बता करके ये हमेशा ज्वर जब तक रहेंगे तब तक शरीर रहेगा, ज्वर का अभाव हो जाएगा शरीर का भी अभाव हो जाएगा। तो इसके द्वारा ये कह दिया इन्होंने कि ज्वर इसका अपना स्वभाव है शरीर का, और जो स्वभाव होता है जो गुण होता है जिसका, वो गुण हट जाएगा तो गुण ही रहेगा नहीं। जैसे जल का शीत स्वभाव है, शीतता ही खत्म हो जाएगी तो जल भी खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि की उष्णता समाप्त हो जाएगी तो आग समाप्त है क्या, नहीं, उसको आग कहां नहीं जाएगा, जब जलाई नहीं रहा है तपाई नहीं रहा है तो उसको हम आग नहीं कहेंगे, जो तपाएगी वही क्या है, आग है, जो जलाएगी वही आग है, जो नहीं जलाता उसको आप आग नहीं कह सकते। इसी तरह ज्वर नहीं है तो शरीर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अभेद संबंध है, किसका, ज्वर का और तीन शरीरों का अपने में अभेद संबंध है। अभेद संबंध होने के कारण ज्वर हटते ही शरीर भी हट जाता है, तो ज्वर हटाने के लिए बताएंगे उपाय। इसलिए दोनों में अभेद है, मतलब एक प्राकृतिक उसका अपना गुण स्वभाव है। तो उन्होंने दृष्टांत ये दिया कि जैसे तंतु है तो पट है, पट की स्थिति अपनी तंतु से ही है, तंतु नहीं तो पट नहीं है। ये 28वें श्लोक में दृष्टांत के द्वारा अभी समझा रहे हैं, तत्र दृष्टांतम आह, दृष्टांत देकर के समझा रहे, उच्चारण कर लीजिए। तंतुर्वियुज्येत पटो तंतुर्वियुज्यते पटो वालेभ्य कंबलो यथा, वालेभ्य कंबलो यथा मृदो घटस्तथा देहो, मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योपीति दृश्यताम्, ज्वरेभ्योपीति दृश्यताम् तंतुर्वियुज्यते पटो। जैसे कहते हैं कि तंतु यदि हट जाए तो पट नाम की कोई वस्तु रहेगी नहीं, बालेभ्य कम्बलो यथा, बाल अर्थात बाल, जो भेड़ियों के बाल होता है ना, भेड़ी के बाल से कम्बल बनता है, जो उनकी जो होती है ना शॉल इत्यादि, तो सफेद जो भेड़ बकरिया होती है पहाड़ों में, हाँ उनके बालों से बनता है। अब वो बाल नहीं रहेंगे तो क्या कंबल रहेगा? कंबल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। कंबल है का मतलब क्या है? बाल है। तंतु है का मतलब पट है। पट नहीं, तंतु नहीं है, बाल नहीं है, तो पट भी नहीं है और कंबल भी नहीं है। इसी तरह क्या है, ज्वर नहीं है तो शरीर नहीं है, चाहे तीनों शरीर कोई भी हो, मतलब ज्वर से ही शरीर की उत्पत्ति है। जैसे तंतु से पट की उत्पत्ति है, बाल से कंबल की उत्पत्ति है, इसी तरह ज्वर से ही क्या है, ये आते हैं। ज्वर है तभी शरीर है, क्योंकि ज्वर को भोगने के लिए ही शरीर है। जब शरीर ही नहीं तो ज्वर ही नहीं तो फिर शरीर कहां से आएगा? अथवा कहेंगे नहीं ज्वर को हटा देंगे और शरीर को ले आएंगे। किस लिए शरीर को लाएंगे? शरीर की उपयोगिता किस में है? ज्वर आदियों के भोग में है। यदि भोग नहीं है तो शरीर किसी भी मतलब का नहीं है। तो इसलिए ज्वर शरीर के लिए होना आवश्यक है। तो इसलिए ज्वर हट जाएगा तो अपने आप शरीर हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कृति, शरीर रूप कृति, ज्वर रूप कृति, ये किसकी कृति है? ईश्वर की कृति है ना, माया के द्वारा ईश्वर ने बनाया, क्योंकि इस सृष्टि है ना ये सब कुछ। शरीर तो इस सृष्टि है और इस सृष्टि में भोग भी तो इस सृष्टि है। हाँ, किंतु क्या है, वो जो भोग है ये अपने पाप पुण्य को कर्म का फल है, किंतु है तो भोग इस ही सृष्टि, जो हमारे जीवन में दुख आ गया ये हमारे पाप का फल आ गया, तो वो पाप का फल देने वाला कौन है? ईश है। हमारे पुण्य का फल को देने वाला कौन है? वो ईश है, मतलब इस सृष्टि हो गई। तो इस सृष्टि जो परमात्मा सृष्टि करा, व्यर्थ हो उसकी कोई भी सृष्टि नहीं है। हमारी सृष्टि व्यर्थ हो सकती किंतु उनकी सृष्टि व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी जो सृष्टि है बड़ी सोच समझ करके है। सत्य संकल्प तो है किंतु सोच समझ करके, व्यर्थ किसी चीज को लाते नहीं है। जिसका कोई फल ही नहीं है उन चीजों को उत्पन्न कराते नहीं है। तो इसलिए यदि ज्वर है तो शरीर है, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें शरीर नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वर को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्वर को हटाना पड़ेगा। फिर ये ज्वर आते कहां से है? तो ये बताया, ये स्थूल शरीर का ज्वर वात कफ पित्त से आता है, लिंग शरीर का ज्वर काम क्रोधादि और शांतादियों से आता है, और कारण शरीर का ज्वर अज्ञान से आता है। तो अब इन तीनों ज्वरों को यदि हटाना है तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जिसको शरीर नहीं चाहिए उसके लिए ज्वर को हटाने का प्रयत्न करना है। कैसे हटाना है? जैसे शरीर का मैल धोकर के निकलते ऐसे हटाना है क्या? नहीं, समझना मात्र है। विवेक विचार के द्वारा क्या है इसको हम हटा सकते हैं। तो ये दृष्टांत के द्वारा बताया, मृदो घटस तथा देहो ज्वरेभ्यो अति इति दृश्यताम। जैसे घड़े को हटाना है तो किसको हटाना पड़ेगा? मिट्टू को हटाइए, घट अपने आप हट जाएगा। तथा देहो ज्वरेभ्यो अपि दृश्यताम। इसी प्रकार देह जो है हटेगा कब? ज्वरेभ्य अपि, ज्वर हट जाएगा तो देह भी हट जाएगा। टीका देख लीजिए, इदानीं कुठस्थे ज्वर अभावं कैमुतिक न्यायेन दिदर्श ईशुः चिदाभासी तावत् ज्वराभावं दर्शयति। इदानीं कुटस्थे इस समय में इसमें इस कुटस्थ में ज्वर का अभाव कैमुतिक न्याय के द्वारा दिखा रहे हैं। दिदर्श ईशुः अर्थात दिखाने की इच्छा वाले ग्रंथकार पहले क्या कर रहे हैं, चिदाभासे तावत् ज्वराभावं दर्शयति। पहले चिदाभास में ज्वर होता ही नहीं है, चिदाभास जो है कुटस्थ में ज्वर का अभाव है, ये कैमुतिक न्याय के द्वारा क्या है दिखा करके कुटस्थ में भी अभाव होता है। कुटस्थ में ज्वर का अभाव दिखाना है, क्या करके दिखाना है, चिदाभास में ज्वर नहीं है, इसी से क्या हो जाता है सिद्ध कि कुटस्थ में भी ज्वर नहीं है। पहले दृष्टांत दिया, प्रतिबिंब में ही कोई खराबी नहीं है, दिख रही है तो बिंब में दिखेगी नहीं है, स्वाभाविक है। जब प्रतिबिंब में ही नहीं कुछ तो बिंब में होने में की कोई संभावना नहीं है। प्रतिबिंब में नहीं है ये कहने के बाद बिंब में नहीं है ये कहना बनता है क्या, नहीं बनता है, कहने की जरूरत ही नहीं कि बिंब में नहीं है करके। तो पहले चिदाभास में ज्वर नहीं है ये सिद्ध जब हो जाएगा तो अपने आप वो चिदाभास का बिंब कौन कुटस्थ उसमें भी अपने आप क्या है स्वतः सिद्ध होता है कि ज्वर उसमें भी नहीं है। तो उसमें कहने की जरूरत नहीं है कि कुटस्थ में भी क्या है ज्वर नहीं है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कहने की आवश्यकता कहाँ है, चिदाभास में कहने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम चिदाभास में सुख दुख आज मान करके चल रहे हैं, इसलिए चिदाभास में दिखा रहे कि हे जीव चिदाभास में क्या है ज्वर नहीं है। तो जब चिदाभास में ज्वर नहीं है तो तुम जो कुटस्थ आत्मा हो उसमें भी ज्वर कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुमको एक समझाना है कि चिदाभास में ज्वर नहीं है, तुम स्वतः क्या करोगे निर्णय कर लोगे कि कुटस्थ में भी क्या है ज्वर नहीं है। इसी को सिद्ध करने के लिए ये 29वां श्लोक आ रहा है। चिदाभासे तावत् ज्वराभावं दर्शयति, पहले चिदाभास में ज्वर का अभाव दिखाते हैं, उसके बाद कुटस्थ में ज्वर नहीं है ये दिखाने के लिए कोई युक्ति देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वो क्या कर लेगा स्वीकार कर लेगा। चिदाभासे स्वतः कोऽपि चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः ज्वरो नास्ति यतश्चितः प्रकाशैक स्वभावत्वम् प्रकाशैक स्वभावत्वम् एव दृष्टं न चेतरत् एव दृष्टं न चेतरत् चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति। कहते हैं वो चिदाभास जो है उस चिदाभास में स्वतः स्वाभाविक रूप से क्या है कोऽपि ज्वरो नास्ति, कोई भी ज्वर नहीं है, अर्थात तीनों ज्वर उस चिदाभास में नहीं है। यतः यतः मतलब जिस कारण से चिदाभास में जिस कारण से कोई भी ज्वर नहीं है उस कारण से चितः प्रकाशक प्रकाशैक स्वभावत्वम् जो चिद रूप प्रकाश रूप जिसका अपना स्वभाव है ऐसा जो कौन कुटस्थ एवं दृष्टम न चेतरत ऐसा क्या है जानकार जो विद्वान है उन लोगों ने क्या है अनुभव किया है, स्वीकार किया है कि जब चिदाभास में ही ज्वर नहीं है तो वो चिदाभास जिस चिदाभास का जो बिंब कौन कुठस्थ उसमें क्या है ज्वर रहने की कोई संभावना नहीं है, ये उनका क्या अनुभव है। और हम आप लोगों को समझाने के लिए जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब क्या मानना है चिदाभास। अब उस दर्पण में जो प्रतिबिंब चिदाभास उसमें ही कोई खराबी नहीं है तो बिंब में खराबी दिखेगी क्या अथवा हम मानेंगे क्या, कोई सवाल ही नहीं है। जैसे प्रतिबिंब में कोई खराबी नहीं है तो स्वतः अपने आप ही सिद्ध होता है कि बिंब में भी कोई खराबी नहीं है। अब एक विशेष बात देखिए, बिंब में कोई खराबी नहीं है ये सिद्ध करने के लिए हम किसके सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं, है ना, और उस प्रतिबिंब को देखते हैं। हम इधर नहीं देख रहे, किसको देख रहे, और उस प्रतिबिंब को देखने के बाद उस प्रतिबिंब में किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं है वो देख लिया। इस देख करके हमने निर्णय क्या किया, बिंब में कोई खराबी नहीं है। प्रतिबिंब में खराबी दिखी तो हम क्या करने जाते हैं, प्रतिबिंब को सुधारने जाते हैं क्या, बिंब को। पर जब प्रतिबिंब में कोई खराबी नहीं है तो हम इसको बिंब को सुधारने के लिए नहीं जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें नहीं तो इसमें क्या खराबी रहेगी। इसी प्रकार उस ज्ञानी को यह दिख रहा है चिदाभास में ही कोई खराबी नहीं है, खराबी मतलब ज्वर, चिदाभास में ही कोई ज्वर नहीं है वो देख रहा है। तो जब चिदाभास में ही ज्वर नहीं देख रहा है तो उस चिदाभास का जो बिंब उसमें ज्वर देखेगा नहीं देखेगा, अर्थात उसको कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, यही कहते हैं। नई तरह उसमें कोई किसी प्रकार का क्या है वो अन्य कुछ भी नहीं मानता, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, उसमें स्वच्छ दिखता है अपना क्या बिंब, अर्थात कुठस्थ में किसी प्रकार का ज्वर दिखता नहीं है, स्वच्छता के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। अर्थात ज्वरादि से ज्वर को छोड़कर ही क्या मात्र अपने स्वरूप को ही देखता है, इतर को देखता नहीं है। टीका देख लीजिए, चिदाभासे इति चिदाभासे स्वतः शरीरत्रय गत ज्वर संबंधम अंतरेण न कोपि ज्वरो विद्यते। कहते हैं चिदाभासे अर्थात उस चिदाभास में स्वतः शरीर त्रयगत, चिदाभास में अपने आप में स्वतः में क्या है जो शरीरगत जो ज्वर है उन शरीरगत ज्वरों का क्या है संबंधम अंतरेण कोपी न ज्वर विद्यते। उसमें जो है चिदाभास में जो शरीर में रहने वाला जो ज्वर है वो ज्वर क्या है उन ज्वरों का संबंधांतर के द्वारा क्या है वो न कोपी ज्वरो विद्यते। वो देख रहा है कि शरीर आदियों में जो रहने वाला जो ज्वरों का संबंध है उसको छोड़कर के क्या है न कोपी ज्वरो विद्यते, अर्थात उसमें वो ज्वर नहीं देख रहा है न कोपी ज्वरो विद्यते। संबंधांतर मतलब संबंध को संबंध के बिना, इसमें शरीर के साथ किसका संबंध है ज्वर का, है ना, तो वो चिदाभास में क्या देख रहा है संबंधांतर देख रहा है, संबंध किसका है ज्वर का शरीर के साथ है, तो शरीर के साथ जो ज्वर का संबंध है उस संबंध को छोड़कर के और कुछ नहीं देख रहा है, संबंध को छोड़ करके देख रहा है, हाँ संबंध छोड़ दे रहा है, शरीर का और ज्वर का जो संबंध है उसको छोड़ करके चिदाभास में देख रहा है। तो जब शरीर का और ज्वर का आपस में संबंध होगा तो शरीर में वो प्रतीत होगा, किंतु चिदाभास में वो संबंध देख ही नहीं रहा है ना, स्थूल शरीर के साथ ज्वर का संबंध है, मतलब संयोग संबंध है उसका, है ना। वो संबंध चिदाभास में नहीं देख रहा है, वो संबंधांतर देख रहा है, मतलब वहां संबंध नहीं देख रहा। न कोपी ज्वरो, वहां नहीं देख रहा है ज्वर वहां पर, न विद्यते। कुत इत्यता है, कैसे आप जान रहे, कैसे जो है उस चिदाभास में जो है ज्वर नहीं दिख रहा है। तो यतः, जिस कारण से, तो यतः मतलब मूल श्लोक में पूर्वार्ध का यतश्चितः, यहां से लेकर के प्रकाशिक स्वभावत्वम एव दृष्टम न च इतर, ये उत्तर हो गया उसका। अर्थात ये कहते हैं, उसका अर्थ करते हैं, चितः प्रकाशेक स्वभावस्य, चितः मतलब वो चैतन्य, वो प्रकाशेक स्वभाव वाला होने के कारण, ऐसा चित प्रकाशक स्वभाव वाला कौन कुठस्थ, अथवा विद्वान लीजिए, स्वभावस्य विद्वद अनुभव सिद्धत्वात्। चित एक प्रकाश स्वभाव वाला जो कौन कुठस्थ, वो उस कुठस्थ का अनुभव कौन कर रहा है, विद्वत अर्थात विद्वान, विद्वान ने क्या किया, अनुभव किया है, वो विद्वानों के द्वारा अनुभव सिद्ध है। क्या कुठस्थ कैसा है, ज्वर से रहित है। क्यों ज्वर से रहित है, क्योंकि उस कुठस्थ का जब प्रतिबिंब कौन चिदाभास, उसमें ही जब ज्वर नहीं है तो बिंब में कैसे ज्वर रह सकता है, ये विद्वानों ने अनुभव किया है। एक शास्त्र प्रमाण है, एक अपना खुद का अनुभव है, और युक्ति भी है। युक्ति क्या है, जो प्रतिबिंब में, दर्पणस्थ प्रतिबिंब में कोई खराबी नहीं है, तो उसका जो बिंब, उसमें कोई खराबी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, तो युक्ति है। जहां जहां बिंब में प्रतिबिंब में खराबी नहीं है, वहां वहां पर बिंब में भी कोई खराबी नहीं है। जहां बिंब में खराबी होती है, वहां पर प्रतिबिंब में खराबी होती है। जैसे मूल जब दर्पण के सामने गए, तो बिंब में यदि काला इधर टीका है, तो अपने प्रतिबिंब में दिखेगा, तो उसको अन्वय और वितिरक, प्रतिबिंब में खराबी नहीं है, जहां जहां प्रतिबिंब में खराबी नहीं, वहां वहां पर बिंब में भी खराबी नहीं है, और जहां जहां बिंब में खराबी है, वहां वहां पर प्रतिबिंब में भी खराबी होती है। ये अन्वय रवितरिक से लगा देना, जहां जहां धुआं होता है, वहां वहां पर वन्नी होती है, और जहां जहां वन्नी का अभाव होता है, वहां वहां पर धुआं का अभाव भी होता है। जहां वन्नी नहीं, वहां धुआं भी नहीं है, किंतु जहां धुआं है, वहां पर वन्नी अवश्य है। इसी तरह यहां पर भी, तो प्रकाशिक स्वभाव कौन, जो कुठस्थ चित, उसमें क्या है, किसी प्रकार की कोई ज्वर आदि की संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब चिदाभास, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो जब उसमें खराबी नहीं है, तो बिंब में संभावना ही नहीं है। ये उसको और कुछ तर्क लगाना, और कुछ प्रयत्न करना समझने के लिए कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही वो समझ में आ जाता है। ये विद्वानों ने क्या है, अनुभव किया है, विद्वानों के द्वारा अनुभव सिद्ध होने के कारण कहते हैं प्रतिबिंबस्य चिदाभासस्य तथात्वम इष्टव्यम। इसलिए क्या है, उस चिदाभास में भी क्या है, समझना चाहिए, उस प्रतिबिंब में है नहीं है। जब प्रतिबिंब में नहीं है, तो बिंब में भी नहीं है, अर्थात चिदाभास में नहीं है, इसका मतलब कुठस्थ में भी नहीं है। आगे कहते हैं तदर्थम चिदाभासे ज्वरा अभाव उपपादित, तदर्थम चिदाभासे उस कुठस्थ के लिए, क्या किया हमने, उस कुठस्थ में किसी प्रकार का भोक्तृत्वादी कोई बात नहीं है, ज्वरत्वादी कोई बात नहीं है, अर्थात ज्वर नहीं है उस कुठस्थ में, तो उस कुठस्थ में क्या है, ज्वर नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए क्या किया हमने, पहले चिदाभास में ज्वर नहीं है ये सिद्ध किया। क्यों सिद्ध किया, क्योंकि चिदाभास में ज्वर नहीं है ये सिद्ध होने से अपने आप कुटस्थ में भी ज्वर नहीं अपने आप सिद्ध हो जाता है। वही कह तदर्थम चिदाभास है अर्थात उस कुटस्थ के लिए क्या है चिदाभासी ज्वर अभाव उपपादित उस चिदाभास में ज्वर का अभाव का उपपादन अर्थात कथन किया है। क्यों किया तदर्थम तदर्थ मतलब कुटस्थ के लिए उस कुटस्थ में ज्वर नहीं है ये सिद्ध करने के लिए पहले हमने चिदाभास में ज्वर नहीं है सिद्ध किया। ये सिद्ध करने से अपने आप ही कुटस्थ में भी क्या है ज्वरत्व का अभाव सिद्ध हो जाता है। तद इदानीं दर्शति इसी बात को इस यहां पर दिखा रहे हैं चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वरा साक्षीणिका कथा ज्वरा साक्षीणिका कथा एवमप्येकतां मेने एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्य विद्यया चिदाभासो ह्य विद्यया चिदाभासेपि असंभाव्या ज्वराः। जब चिदाभास में क्या है ज्वर की असंभावना है जब चिदाभास में ही नहीं है ज्वर तो साक्षिणी का कथा साक्षी में कहने की क्या बात है साक्षी मतलब बिंब कुटस्थ चिदाभास का मतलब क्या प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब रूप जो चिदाभास है उसमें जब कोई खराबी नहीं है ज्वर नहीं है तो उस प्रतिबिंब का जो बिंब कौन कुटस्थ साक्षी उसमें ज्वर कैसे हो सकता है क्या उसमें कहना पड़ेगा हमको कि उसमें कोई ज्वर नहीं है ये कहना नहीं पड़ता है कहने की जरूरत भी नहीं है। तो युक्ति यह है प्रतिबिंब में नहीं है इसका मतलब अपने आप ही क्या बिंब में भी नहीं है प्रतिबिंब में होगा तो बिंब में जरूर होगा जैसे शरीर में एवं अपि एकताम मेने चिदाभासो ही अविद्या। तो फिर ये जो चिदाभास में जो अनुभव तो यही हो रहा है ज्वर आदि होगा सभी कहते हैं मुझे बुखार आ गया मेरा अपमान हो गया मैं अज्ञानी हूं मुझे कुछ समझ नहीं आता नहीं है हम मूड है तो ये तीनों के तीनों हम मान रहे ना वर्तमान में तो ऐसे ही लग रहा है मुझे बुखार आ गया सीधा उसने क्या कह दिया मुझे बुखार आ गया शरीर को बुखार आ गया ऐसा बोला है? मुझे बुखार आ गया अच्छा अनुभव हो रहा है कि नहीं ऐसा अनुभव तो मुझे हो रहा मुझे बुखार आ रहा है और मेरा अपमान हो गया मुझे क्रोध आ गया यह अनुभव तो हमें हो रहा है और जब कुछ समझ में नहीं आता महाराज हम तो अज्ञानी है हमको क्या समझ में आता है आप तो ज्ञानी है ये किसको समझ में आया हमें ही समझ में आ रहा है अनुभव तो कर रही है फिर ये कैसे इस अनुभव को क्या करेंगे उसी को बता रहे एवं अपि एकताम मेने चिदाभासो ही अविद्या। ये क्यों हो रहा है तो कहते हैं जो तीन शरीर है उन तीन शरीरों के साथ अज्ञान के कारण तादात्म्य कर लिया किसने चिदाभास ने क्या किया चिदाभास ने इन तीनों शरीर के साथ अज्ञानता के कारण तादात्म्य किया उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं नहीं हूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जब मैं नहीं हूं, ये जब समझ में आएगा तो नहीं होगा, परंतु समझ में ना आने के कारण क्या है, उसको यह अनुभव हो रहा है कि मुझे बुखार है, मैं अपमानित हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, है इनका धर्म। किंतु उन धर्मों को अपने में अनुभव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके साथ उसका तादात्म्य है। किस कारण से, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, यही बता रहे। अविद्या के कारण एकता को प्राप्त हुआ और मान रहा है, मैंने मतलब वो मान रहा है। तो कहता है टीका देख लीजिए, चिदाभासे अपीति यदर्थम चिदाभासे भी ज्वरा न संभाव्यन्ते, जिसके लिए चिदाभास में भी क्या है, ज्वर संभव नहीं है, तदा न साक्षिण संभवती, तो उस समय भी क्या है, साक्ष्य में भी क्या है, ज्वरादि संभव नहीं है। किमु वक्तव्यम, अर्थात ये कोई कहने की बात नहीं है, ये पहले बताया। किंतु तो प्रश्न होता है, आपने तो बहुत बढ़िया बात बताई कि क्या है, चिदाभास में जब ज्वर नहीं है तो कुठस्थ में कहने की क्या बात है, प्रतिबिंब में कोई दोष नहीं, तो बिंब में कोई दोष होने की संभावना नहीं है, कहना ही नहीं पड़ता कि बिंब में दोष नहीं है, ये कहना पड़ेगा क्या, नहीं कहना पड़ेगा। किंतु हमें तो ये प्रतीत हो रहा है कि क्या है, चिदाभास में जो है ज्वर की अनुभूति हो रही है, ये कैसे, ये तो युक्ति के द्वारा आपने बताया कि प्रतिबिंब में नहीं है, तो इसका अर्थ बिंब भी में नहीं है, सरल सरल बात है, किंतु अनुभव तो विपरीत हो रहा है ना। ननु तरीही ज्वरामी इति अनुभवस्य का गति, अरे मैं तो पीड़ित हूं, मुझे ज्वर है, मुझे बुखार आ रहा है, मैं अपमानित हूं, मैं अज्ञानी हूं, इसकी क्या गति है, इसको कहां लगाएंगे, कहां गति, इसको कैसे लगाएंगे गति, इत्यता आहा, कहते हैं एवं अपि एकताम इति, इस उत्तरार्ध के द्वारा उसका उत्तर दिया, क्या है, मैं क्या है पीड़ित हूं, ये जो अनुभव है इसको कहां लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, मैं तो अनुभवकरण में जुड़ रहा हूं, तो उसका उत्तर दिया एवं अपि एकता मैंने चिदाभासो ही अविद्या, अविद्या ही चिदाभासो एकताम मैंने, अविद्या के कारण चिदाभास क्या है, एकता को अर्थात तादात्म्य को वो क्या है प्राप्त करता है, तादात्म्य कर लेता है, उसी समय क्या हो जाता है, उसको ये लगने लगता है कि जब शरीर को जोर हो गया तो वो कहता है मुझे जोर हो गया, ऐसा मानने लगता है, उसको ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि जिसके साथ तादात्म्य करेंगे उसका क्या है अनुभव तो होना ही होना है, जो जिसके साथ तादात्म्य करेगा, तो तादात्म्य कौन करेगा, जड़ जड़ के साथ तादात्म्य करेगा क्या, चैतन्य क्या है किसी जड़ के साथ तादात्म्य करेगा और उस तादात्म्य को हटा भी देगा, और जड़ जड़ के साथ तादात्म्य स्वतः नहीं करता है, उसको हम क्या है किसी जड़ वस्तु को किसी जड़ वस्तु के ऊपर रख देंगे तो उसमें क्या है वो तादात्म्य होने लगता है, और हम करते हैं क्या है, हम करते हैं उनमें होता है, अब उसमें होता है इसलिए उसको हटने के लिए कोई प्रयास भी नहीं है, जैसे अग्नि के ऊपर क्या है जल का घड़ा रख दिया तो तप रहा है, तो है तो शीत उसका स्वभाव, किंतु अग्नि के साथ संबंध होने के कारण वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया, अभी वो गर्माहट हटाने के लिए उस जल को कहना पड़ता है कि अरे तुम क्या करो अब ठंडा हो जाओ, नहीं हो तो वह तादत में होने के कारण उसको अपने आप हो गया, और यह हमने किया क्या समझे, वहां हो गया इसलिए उसको अपने आप ही वो हट भी गया, कि तो हमने किया इसलिए अपने आप नहीं हटने वाला, वो हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम चेतन है, वो जड़ है। जड़ में वस्तु आती भी है और वस्तु जाती भी है, किंतु चेतन में ऐसा नहीं है, आती जाती नहीं है, उसको हम लाते हैं, तो हमको हटाना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकता, कि तो हम कर सकते हैं ना। उसमें भली वो ज्वराधि कभी हट नहीं पाएंगे, मान लीजिए जैसे शरीर है इसका अपना स्वभाव है, ये तो कभी हटेंगे नहीं, परंतु उन ज्वर को हम अपने में यदि स्वीकार करते हैं, तो उस स्वीकार किए हुए को हम अस्वीकार भी तो कर सकते हैं। कैसे? ज्ञान के द्वारा। तो अज्ञानता के कारण हमने उसको हमने स्वीकार कर लिया, अब ज्ञान के द्वारा क्या करना है, उसको अस्वीकार करना है। ये उत्तरार्ध के द्वारा बताया कि अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण क्या है, इस तरह हमें प्रतीत हो रहा है कि जो शरीर की जो भी समस्या है, वो समस्या हमारे में प्रतीत हो रही है, वो मात्र अज्ञान के कारण, हमें ज्ञान नहीं है। और उसको हम क्या कर लिया, ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मान लिया, मन ही मैं हूं, अथवा मन मेरा है, शरीर मेरा है, अज्ञान मैं हूं अथवा अज्ञान मेरा है। इस तरह जब वो मान लेता है, तो उसकी जो भी घटनाएं हैं, वो घटना का अनुभव वो चैतन्य में नजर आने लगता है। और जिसमें होता है वो तो कुछ बोलता ही नहीं, पहली बात तो शरीर में पीड़ा हो गई, शरीर बोला क्या मुझे बुखार आ गया करके, बोल कौन रहा है, जो अनुभव कर रहा है चैतन्य, जो बोल सकता है उपाधि के द्वारा, वो बोल रहा है, ये एक विशेषता है। हाँ, चिदाभास तो वो तो चैतन्य का तो गुण रहेगा ना चिदाभास में, जो जो चैतन्य गुण चिदाभास में रहेगा, तो उसमें चेतनता है, तो चिदाभास में भी चेतनता रहेगी ना, इसलिए वो कह रहा है ऐसा। एकता मेने इति संक्षेपेण उक्तार्थम प्रपंचयति, कहते हैं एकता मेने, ऐसा जो तादात्म्य करके बोल रहा है, मान रहा है, तादात्म्य करने वाला जो बोलता है, जानता है, तो कहते इति संक्षेपेण उक्तार्थम प्रपंचयति, उसका संक्षिप्त रूप में क्या है, उसी अर्थ को प्रपंचयति, अर्थात उसको विस्तार करके समझा रहे, ये कैसे वो अनुभव करता है, जब नहीं होने पर भी ऐसा लग रहा है, उस चीज को समझाने के लिए स्पष्ट कर रहे हैं, प्रपंच मतलब उसका विस्तार करके बता रहे। साक्षी सत्यत्वामध्यस्य, साक्षी सत्यत्वामध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये, स्वेनोपेते वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य, तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते, स्वरूपमिति मन्यते। साक्षी सत्यत्वम अध्यस्य स्वेन उपेते वपुस्त्रये, वो चिदाभास जो है ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे बुखार होता है, मेरा अपमान होता है, मैं अज्ञानी हूं, ये जो क्यों कह रहा है, कैस किस आधार से कह रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो, अब दृष्टांत देना है तो जो दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, वो कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, तो फिर आपका चिदाभास कैसे बोलेगा? चिदाभास का मतलब क्या? प्रतिबिंब। तो कैसे? तो कहते हैं साक्षी का जो सत्यत्व अर्थात सत्ता, वो किसमें है? चिदाभास में भी है। जो साक्षी की सत्यता को लेकर के क्या है वो चिदाभास बोलता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब किसमें पड़ा, दर्पण में, और वही दर्पण फिर अंधेरे में क्या कर रहा है, उस अंधकार को हटा रहा है। तो प्रकाश अंधकार को हटाना किसका काम है, सूर्य का काम है। कि तो हटा कौन रहा है, प्रतिबिंब। सूर्य में पड़ा हुआ प्रतिबिंब क्या कर रहा है ना, अंधकार को हटा रहा है। तो अंधकार को हटाना है प्रकाश का काम। वो प्रकाश किसका है, सूर्य का है। कि तो उसका जब प्रतिबिंब आ गया दर्पण में सूर्य का, वो प्रतिबिंब भी क्या कर रहा है, अंधकार को हटा रहा है। अब अंधकार को जो हटाने वाला प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब हटा कैसे रहा है, सूर्य के प्रकाश की सत्ता से हटा रहा है, सूर्य के प्रकाश को लेकर के हटा रहा है। मतलब सूर्य का जो सामर्थ्य है वो प्रतिबिंब में सामर्थ्य आ गया। इसी तरह कुठस्थ साक्षी की जो सत्यता है वो चिदाभास में है। चिदाभास में होने के कारण क्या है, जैसे साक्षी में क्या है स्वरूप, साक्षी का जो स्वरूप है उसी तरह का स्वरूप क्या है चिदाभास में आ रहा है, उसकी सत्यता इसमें प्रतीत। जैसे सूर्य का प्रकाशत्व सूर्य के प्रतिबिंब में भी है, तो वो सूर्य का जो प्रकाशत्व को लेकर के प्रतिबिंब क्या कर रहा है, अंधकार को हटा रहा है। इसी तरह साक्षी कुठस्थ का जो चिदाभास, वो चिदाभास उस साक्षी का सत्यत्व को लेकर के क्या कर रहा है, वो तादात्म्य कर रहा है, वो सत्यता उसमें लेकर के कर रहा है। वही कह रहे अध्यस्य स्वेन उपेत उपेते वपुस्त्रये, अर्थात तीनों शरीरों में क्या करता है वो चिदाभास, अपने सहित क्या है उन शरीरों में साक्षी की सत्यता को लेकर के अभ्यास करता है, माने उसमें तादात्म्य करता है, एक हो लेता है उसके साथ। किसके साथ, शरीर त्रयों के साथ एक हो लेता है। जब एक होता है तो उसमें सत्ता तो है ही, कुठस्थ की सत्यता तो है ही, कुठस्थ तो सब जगह व्याप्त है, वो ऐसा कोई जगह ही नहीं कि जिसके बिना वो कुठस्थ जो ये है रिक्त है, ऐसा कोई जगह नहीं। साक्षी सब जगह साक्षी, सबको ऊपर क्या कर रहा है वो देख रहा है। तो कहते हैं इसलिए क्या हो रहा है, वो वहां पर अनुभूति हो रही है। किसको, चिदाभास को, चिदाभास को जो अनुभूति हो रही है किसको लेकर के, साक्षी की सत्यता को लेकर के। वही कर तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य स्वरूपम इति मन्यते, वो जो ज्वरादियों का स्वरूप वो वास्तविक अपना मान के चल रहा है। किसको लेकर के, मुख्य जो कुठस्थ है उसकी सत्ता को लेकर, सत्यता को लेकर के। वो सत्यता जैसे कुठस्थ में सत्यता है, वैसे चिदाभास में भी सत्यता, वो सत्यता क्या उसमें आ रही, वो सत्यता के द्वारा क्या कर रहा है, वो ज्वरादियों में अपना तादात्म्य करके वो ज्वरादियों को अपना ही स्वरूप मान करके उसको प्रकाशित करा रही है। मुझे बुखार आ गया, मैं अपमानित हो गया, मैं अज्ञानी हूं, ऐसा वो मान रहा है। चलिए आगे के विषय में कल करते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।